नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्यार्णम् नमो वज्झायार्णम् नमो लोये सौवसाहूणम् येषु पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिम् पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम् देवादिदेवी 1008 भगवान महावीर स्वामी की पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की धर्म के प्रति निष्ठ एवं शिष्ट एक आत्मा को धर्म साधना आगे बढ़ने के लिए अपनी निष्ठा में और अपनी शिष्टता में मजबूत रहना पड़ता है। निष्ठा में भी शिथिलता न आ जाए और शिष्टता में भी शिथिलता न आ जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति एक धर्मात्मा के पास होना चाहिए। मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए मार्गस्थ आत्मा धैर्यवान होता है। धैर्य बहुत आवश्यक है। यदि धैर्य नहीं है तो निष्ठा में भी कमी आने लगती है और शिष्टता में भी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। साहस बहुत आवश्यक है। साहस के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। साहस की प्राप्ति का उपाय क्या है, यदि यह प्रश्न धर्मात्मा के सामने आता है तो स्वयं ही वह चिंतन करते हुए रास्ता निकाल लेता है। रास्ता निकाल निकाल करके देने वाले कब तक दे सकते हैं? देने वाले भी हमारे पास कभी रह सकते हैं और अपने पास कभी नहीं रहते। देने वालों ने जो दिया है उन्हीं सूत्रों को लेकर के एक निष्ठवान आत्मा, साहसवान आत्मा साहस में कमी न लाते हुए स्वयं आगे बढ़ता है। ऐसा बढ़ना भी चाहिए। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अपनी संपत्ति को छीनने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं होती। कौन सी संपत्ति? आत्मा की। जिस करंडक में तीन हमारे रत्न रखे गए हैं वही तो रत्न करंड है। उस करंडक को खोलकर दूसरा कोई निकालकर अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर डरने की क्या जरूरत है? प्रसन्न रहो, हर्षचित्त होकर के आगे बढ़ो। चेहरे पर चिंता की रेखाएं आनी नहीं चाहिए धर्मात्मा के लिए, वो नुकसानदायक है। चिंता अपने ही करंडक के रत्नों को धूमिल कर सकती है। चिंता नहीं करना है। चिंतित होंगे तो सबसे पहले साहस में कमी आएगी। साहस कम हुआ तो निष्ठा में भी कमी आएगी। निष्ठा में कमी आई तो शिष्टता रह नहीं पाएगी। ये सभी बातें तो धर्मात्मा के लिए ही हैं, जिनको धर्म के प्रति अनुराग प्रेम नहीं होता उनके लिए ये सभी बातें व्यर्थ हैं। अपने रत्नों को संभालना अपने ऊपर है, जवाबदारी स्वयं की ही होती है। प्रातः काल में सम्यक्त्व का स्वरूप दूसरी तरह से बताया था। सत्य का विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सत्य को लेकर के निशंक रहना और यथावत उन क्रियाओं को अनुष्ठान में लाना, यही तो सम्यक दर्शन का स्वरूप है। उसमें कमी नहीं लाना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो सम्यक्त्व का स्वरूप अवतरित हुआ है उसको यथावत जीवन में सुरक्षित रखने का प्रयास ही अपनी करंडक की रक्षा है। करंडक की रक्षा करना है। ये करंड कहाँ है? आत्मा में, अंतरंग में बार बार जाकर के उसको देखभाल करना चाहिए। उसमें कहीं धूल तो नहीं पड़ गई? तीनों हैं क्या, एक ही बचा है क्या, तीनों बचे हैं, इसका अवलोकन कौन करे? स्वयं को ही करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, धर्म के रास्ते से गुजरना बहुत कठिन है ऐसा लगने लगता है। यह साहस की कमी को दर्शाता है। और धर्मात्मा यदि है तो वह साहसी ही होता है, शरीर से भले ही पहलवान न हो। आत्मा की अपेक्षा से वह इतना दृढ़ हो जाता है कि उसका बिगाड़ दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। रत्नत्रय का विनाश हमसे ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमसे, हमारे कर्मों से और कर्मों के उदय से उत्पन्न भावों से रत्नत्रय की चोरी हो सकती है। कर्म भी नहीं चुराते, कर्म भी तब उदय में आते हैं जब हम भावों में कमजोर पड़ गए, शिथिल हो गए, हमारा साहस खो गया और निष्ठा में कमी आने लगी और हम पगडंडी का रास्ता खोजने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्यों डरते? डरने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। कोई आपके रत्नत्रय को छीनने की शक्ति कोई दूसरा रख सकता है क्या? नहीं रखता। तो चुरा ही नहीं सकता है तो डरने की क्या जरूरत? सहज रूप से रहो, सहजता को धारण करो और हर कार्य में भाग लो और सत्य पर निष्ठा और उसके साथ शिष्टा, शिष्टता धारण करते हुए साहसी बनकर आगे बढ़ते रहो। थोड़ा भी धूमिल अपना रत्नत्रय नहीं हो सकता। परीक्षा की घड़ी में चारित्र की परीक्षा नहीं होती, कहीं उससे ज्यादा सम्यक्त्व की परीक्षा होती है। चारित्र के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितियां बाहर से बहुत कम आती हैं, परंतु सम्यक्त्व के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितियां अपने जीवन में बहुत बार आया करते हैं और प्रतिक्षण बाहर में उपस्थित रहती हैं। हवा के निमित्त से जैसे समुद्र में तरंगे उठते हैं और उन तरंगों को तैर कर उस पार जाना चाहता है कोई, तो जहाज का सहारा बना लेता है, उसमें बैठ जाता है और जहाज के कारण अपने प्राणों की रक्षा होती है और जहाज माध्यम बन जाता है। जिनके पास रत्नत्रय का जहाज है और उस जहाज में बैठा है तो प्राणों को कुछ नहीं हो सकता, इतना विश्वास जिस आत्मा को होता है उसका रत्नत्रय, रत्न वाला वह करंडक धूमिल नहीं हो सकता। निष्ठा बढ़ती जाती है, साहस बढ़ता जाता है, विश्वास और प्रौढ़ होता है, मजबूत होता है और वह अंतरंग यात्रा करते हुए अपने अंतर आत्मा को अंतरात्मा बनकर ही जागृत करता रहता है। हे अंतरात्मा जागो, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। वस्तु का स्वरूप जैसा होता है वैसा ही कहना आवश्यक होता है एक धर्मात्मा को। पगडंडी का रास्ता नहीं बताना, राजमार्ग का उपदेश राजमार्ग के रूप में ही धर्मात्मा देता है। जिनेंद्र भगवान के मुखार विंद से जो निकली है वही सत्य है, ये सम्यक दृष्टि को पता रहता है कि नहीं? पता रहता है। जैसा पता है वैसा ही कहना। अज्ञानी जीव अज्ञान के कारण से उन्मार्ग पर चलते रहते हैं। उस उन्मार्ग पर चलने वाले जीवों को एक और पगडंडी बताने लग जाएं तो उस पर चलना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? एक धर्मात्मा धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही पगडंडी का रास्ता बताने लग जाए तो वो उस पर विश्वास करने लगेंगे। पगडंडी पर विश्वास यदि होगा तो वह रास्ता ही बिगड़ जाएगा और यह भी तीसरा मार्ग बन जाएगा। पहला तो एक भगवान का था, दूसरा अज्ञानी जीव जिस पर चलते थे वो बहुत कुछ विकृत था, उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा मध्यम मार्ग बता दिया तो ये पगडंडी बताना हुआ। क्यों बताएं ऐसा, क्या जरूरी है? राजमार्ग को राजमार्ग ही कहने में क्या एक धर्मात्मा के पास निष्ठता नहीं होना चाहिए? क्या धैर्य नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। धैर्य पूर्वक कहो, सन्मार्ग का ही प्रतिपादन करो। बहुत बड़े उन्मार्ग से बचाने के लिए छोटा सा उन्मार्ग का उपदेश मत दो। ऐसा भगवान का उपदेश है। भगवान ने कभी ऐसा किया? भव्य जीवों को उपदेश देते समय जो वस्तु स्वरूप संसार में है, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप जैसा होता है वैसा ही समझाने का प्रयास किया और जीवों को समझ में भी आया। उनके काल में भी 24 तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों के काल में भी उन मार्ग पर चलने वाले जीव अज्ञान से चलते थे, चलने वाले थे क्या नहीं थे? इतने बड़े उन्मार्ग पर चलने वाले जीवों को थोड़ा सा छोटा सा उनको रूपांतरित करने के लिए छोटा सा एक पगडंडी निकाल करके उपस्थित किया जाए तो ये सुधर जाएंगे, ऐसा सोचा? नहीं सोचा। हमको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम धर्मात्मा हैं। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही हम जानते हैं, तो जैसा जानते हैं वैसा ही कहना आवश्यक होता है, क्योंकि धर्मात्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान कभी गड़बड़ नहीं रहता, जैसा स्वरूप है वैसा ही कहता है। रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए समंतभद्र स्वामी ने कहा है, कौन सा पद्य आता है, अन्योन्य मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात् निस्संदेहम वेदय दाहुस्तज्ञान मागमिन। सम्यक ज्ञान का यह लक्षण है। धर्मात्मा के पास अवश्य सम्यक ज्ञान होता है। यदि सम्यक दृष्टि है तो इसमें क्या संदेह, उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं होता है क्या? अवश्य होता है। उसी सम्यक ज्ञान का स्वरूप भगवान ने समझाया है। कैसा होता है वह सम्यक ज्ञान? तो कहते हैं अन्यून मनतिरिक्तम, वो कम करके भी नहीं कहता वस्तु के स्वरूप को, और अधिक करके भी नहीं कहता वस्तु के स्वरूप को। याथा तत्यम, जैसा है वैसा ही कहता है, और कैसा नहीं कहता? विपरीतम, वह विपरीत प्रतिपादन भी नहीं करता। उसके तीन लक्षण है। हम पगडंडी बताएंगे न्यून हो गया, और अति भी बताएंगे तो भी सदोष हो गया अपना सम्यक ज्ञान। विपरीत बताएंगे तो भी धूमिल हो गया अपना सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि का धूमिल नहीं रहता। याथा तत्यम, सरलता के साथ निष्पक्ष होकर के उसका प्रतिपादन करता है। सम्यक ज्ञान उग्र नहीं रहता, सम्यक ज्ञान में पक्षपात नहीं रहता, सम्यक ज्ञान में कषाय नहीं होती। यदि पक्षपात है तो कषाय भी होगी, पक्षपात नहीं है तो कषाय भी नहीं रहेगी। सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण क्या? पक्षपात करना या निष्पक्ष रहना? निष्पक्ष रहना। और यह सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थानवर्ती जीवात्मा के पास भी होता है ना, एक असंयमी के पास होता है। असंयमी जीव भी यदि इतना निर्मल सम्यक ज्ञान को और इतना निर्मल सम्यक दर्शन को यदि धारण करता है, तो इसका अर्थ ये हुआ एक असंयमी जीव भी सत्य के प्रति निष्ठा रखता है, शिष्टता से रहता है, पक्षपात नहीं करता है, ऐसा सिद्ध हुआ। हाँ, असंयमी जीव भी पक्षपात नहीं करता धर्म के स्वरूप को लेकर के, पगडंडी नहीं बताता धर्म के स्वरूप को लेकर के। उन मार्ग पर चलने वाले जीव अनादि अनंत हैं, अनादि काल से चल रहे हैं और अनंत काल तक चलेंगे। इनसे कोई मतलब नहीं रहता सम्यक दृष्टि जीव को। सम्यक दृष्टि जीव कहता है उन मार्ग पर चलने वाले जीवों को सदुपदेश दे करके, जिनेन्द्र भगवान के सम्यक ज्ञान को दान के रूप में दान दे करके मैं दाता बनूं, और उससे यदि उपकार हो सके तो हो जाए, नहीं भी होता है तो वो टेंशन उसका नहीं लेता। क्या लेने का प्रयास करेगा? मेरा कहना कोई मान ही नहीं रहा है, ऐसा टेंशन लेगा? नहीं, वो स्वयं निष्ठ होकर के चलेगा। और जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप है यथावत ही समझाएगा, वस्तु का जो स्वरूप है यथावत ही समझाएगा। वो यदि परंपरा को भी समझा देता है तो निष्पक्ष होकर के ही समझा देता है, कहीं छूट नहीं देता। क्योंकि यह परंपरा धर्म की परंपरा है, धर्म की यदि परंपरा है तो उसमें कोई विकार नहीं हो सकता, उसमें कोई विपरीत रास्ता नहीं रह सकता। धर्म का स्वरूप तो धर्म का स्वरूप है, आत्म साधना के लिए होता है, और उसका जैसा का तैसा उपदेश देना, ये भगवान कहते हैं ऐसा ही काम सम्यक दृष्टि जीव को करना चाहिए, छूट नहीं देना। छूट देने से अज्ञानी जीव पकड़ लेते हैं। और फिर जिनेन्द्र भगवान की परंपरा तो एक तरफ रह जाती है, आपने जो प्रस्तुत किया आपको धर्मात्मा समझकर आपके ऊपर विश्वास करके वो ग्रहण करेगा और चल पड़ेगा। और फिर इसका परिणाम क्या निकलेगा? यह जिसने बताया उसकी परंपरा, फिर ऐसे यदि परंपरा चल पड़ी तो उसको हम उन्मार्ग कहेंगे क्या सन्मार्ग कहेंगे? उन्मार्ग ही कहेंगे, छोटा सा उन्मार्ग। पर छोटे में भी छोटा कह करके सम्यक दर्शन कहीं उसको माफ करेगा क्या? सम्यक ज्ञान कहीं उसको माफ करेगा क्या? इसलिए सम्यक ज्ञान का स्वरूप लक्षण समझाते समय सबसे पहले ये कहा, अन्यूनमनतिरिक्तम। हमारा सम्यक ज्ञान छोटा सा भी दोष के लिए समर्थन कर देता है तो छोटा सा दोष भी काफी है, अपने सम्यक ज्ञान रूपी सम्यक दर्शन रूपी रत्न को धूमिल करने के लिए काफी है। क्यों समर्थन देना, ऐसा सोचता है सम्यक ज्ञानी जीव। जो वस्तु का स्वरूप है, यथार्थ सत्य परंपरा है, उसको प्रस्तुत करके सम्यक ज्ञानी संतुष्ट हो जाता है। प्रस्तुत तो हमने कर लिया, भाषा समिति के साथ प्रस्तुत किया है, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है, कषाय के वशभूत होकर के भी नहीं और पक्षपात के वशभूत होकर के भी नहीं। जैसा प्रस्तुत करना चाहिए था प्रस्तुत हमने तो कर लिया है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। आपत्तियां खड़ी हो जाए हजारों लाखों, सम्यक दृष्टि उस तरफ नहीं देखता। सम्यक दृष्टि ये देखता है कि हमने जो दूसरे के लिए परोस दिया है उससे उसका कल्याण होगा क्या अकल्याण होगा, ये ध्यान रखता है, ये विवेक रखता है, और स्वयं के प्रति निष्ठा रख करके स्वयं को भी उससे बचाता है। छोटे छोटे छोटी परंपराएं उत्पन्न होकर हजारों लाखों परंपराएं बनती है और धर्म का बिगाड़ हो जाता है। तीर्थंकर भगवंत की वाणी धूमिल हो जाती है, ये मार्ग तो एक ही है ना। तीर्थंकर भगवंत की वाणी तो वाणी है, ये उनकी वाणी है, किसी गुरु की वाणी नहीं। ये इनकी परंपरा, ये उनकी परंपरा, परंपरा का चक्कर धर्म में है भी कहां? सारी परंपराएं सर्वज्ञवाणी के अनुसार हो जाती हैं तो धर्म की कोटि में आती है। और अपनी अपनी चाल से अपने अपनी परंपरा को, नई परंपरा को उत्पन्न करती है ये परंपराएं। तो उत्पन्न करने वाला भी कौन? अपना ही ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में धैर्य नहीं था ना, साहस नहीं था ना। इसी साहस के अभाव के कारण से हमने छूट दे दिया। तो हमने जिनेंद्र भगवान के रास्ते को मलिन किया। निर्मल शासन मलिन हो गया। इस निर्मल शासन को मलिन नहीं बल्कि यथावत भव्य जीवों के सामने रखना, निष्पक्ष होकर के रखना, निष्कषाय होकर के रखना आवश्यक माना गया है मोक्ष मार्ग में एक सम्यक दृष्टि जीवात्मा के लिए। अज्ञानी जीव विवेकी नहीं होते, वैसे ही वे अज्ञानी हैं, अनादिकाल से भटक रहे हैं। और एक धर्मात्मा सम्यक ज्ञानी है तो अपने सम्यक ज्ञान का सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करे? अपने सम्यक ज्ञान का यदि सदुपयोग करना है तो वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा ही रखना। कैसे रखना? निष्पक्ष होकर, निष्ठावान होकर, साहसी बनकर। चर्चा भी करना है तो एकदम निष्पक्ष चर्चा। साहस के साथ, सहजता के साथ, हंसते हंसते, डरते डरते नहीं, हंसते हंसते साहस के साथ उस वस्तु स्वरूप को सामने रखो। सामने वाला अज्ञानी है तो उसको देख करके आपको समझाने के भाव तो आते हैं, परंतु उन भावों में थोड़ी सी भी कमजोरी आ गई तो हमारा सम्यक तो भटक सकता है, हमारा सम्यक ज्ञान भटक सकता है। हमारा धैर्य थोड़ा सा भी कमजोर पड़ गया तो हमारा सम्यक दर्शन और ज्ञान घाटे में पड़ सकते हैं। कैसा होता है सम्यक दृष्टि? आत्मा देखो, विचार करो। दूसरे का स्थितिकरण करने से पहले अपनी आत्मा को स्थितिकृत करके निकलना पड़ता है। दूसरे की स्थितिकरण की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी चिंता स्वयं के आत्मा का करना चाहिए। हमारे आत्मा में साहस है या नहीं, निष्कषाय है या नहीं, पक्षपात है या नहीं, ख्याति लाभ पूजा आदि में पड़ा हुआ मेरा ज्ञान है क्या नहीं, ये विचार करना स्थितिकरण करने के भाव कहलाते हैं। अगर स्वयं का ज्ञान भटक रहा है, ख्याति लाभ पूजा इत्यादि भौतिक कामना में लगा हुआ है, नाम के लिए भाग रहा है, नाम से क्या काम मोक्ष मार्ग में बताओ? नाम काम में आने वाला है और धर्म का हम काम करने जा रहे हैं उसमें भी नाम की अपेक्षा हो जाती है, ये कमजोरी है, ये अंतिम वीकनेस है धर्मात्मा का। क्या करना नाम को? नाम सादी शांत है क्या सादी अनंत है? सादी शांत नश्वर होता है, नश्वर सुख के पीछे पड़ोगे। नाम का आनंद कब तक मिलने वाला है ये तो विचार करो। जब तक हो कानों से सुनेंगे, कर्णेन्द्रियों से सुनेंगे, दोनों कान दे करके मेरे संबंध में कौन क्या कह रहा है, वाई वाई कह रहा है, हाँ यही तो चाहिए था मुझे, इसलिए हमने इनको पगडंडी बताया है। तो पगडंडी का मार्ग उपदेश में कहकर उससे वाय वाय बात लुटाना, ये कर्णेन्द्रिय का ही विषय है, विषय वासना है। इसका त्याग हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? त्याग करना आवश्यक है कि नहीं? ये त्याग भी प्रथम सीढ़ी वाला त्याग है। कभी नहीं हमको ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, हमको अपनी संपत्ति चाहिए। हमारा सम्यक दर्शन निर्मल रहे काफी है, दुनिया की चिंता नहीं। हमको जनता नहीं चाहिए, जनार्दन नहीं चाहिए, हमको चाहिए रत्नत्रय, उसमें दत्तचित रहूं, निष्ठावान रहूं, विश्वासवान रहूं, मेरे कदम अड़िग रहे उस सम्यक्त्व के मार्ग पर। ये धर्मात्मा की एक अपूर्व निष्ठा होती है। वह धर्मात्मा कभी चलायमान यदि अपनी आत्मा को होने नहीं देता तो पर आत्मा को उपदेश देने का अधिकारी भी वही होता है। जो स्वयं मार्ग पर निष्ठ है वही बागडोर संभाल सकता है, संचालित कर सकता है धर्म के पथ को, वही स्थितिकरण करने की योग्यता रखता है। धर्म के तत्व बड़े बारीक हैं, सूक्ष्म भी हैं, पर सरल भी हैं। यदि करने के लिए बैठ जाए बहुत सरल हैं, यदि करने की इच्छा ना हो तो सारे दोष आत्मा के भीतर उत्पन्न होंगे। सहिष्णुता नहीं रहेगी, साहस नहीं रहेगा, गंभीरता नहीं रहेगी, निष्ठता नहीं रहेगी। डर डर करके कब तक डरोगे? अनादिकाल से तो डर के कारण से तो धर्म नहीं कर पाए। भगवान ने क्या कहा? धर्मात्मा यदि धर्म को स्वीकार करके चल रहा है तो उसके भीतर चार दोष नहीं रहते। कौन कौन से? भय पहला नंबर का, यही तो गड़बड़ करता है सब जगह। हम डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं अपने वाले सभी छूट जाएं तो क्या होगा, हमारा परिसर हमसे दूर होगा तो क्या होगा, हमारा परिसर हमें साथ नहीं देगा तो क्या होगा, फिर मैं कहां जाऊंगा, यही तो आता है ना। लेकिन धर्मात्मा के दिल में, आत्मा में ये विचार नहीं आते, यदि मैं साहस के साथ आगे दो कदम बढ़ाऊंगा तो पीछे वाले भी सोचते हैं इतने संकट के आने पर भी यदि यह साहस के साथ आगे बढ़ रहा है तो इनका साथ देना हमारे लिए भी आवश्यक है, हो सकता है उसी में सत्य मार्ग हो। तो एक एक व्यक्ति जुड़ता जाता है और अपनी सेना बनती जाती है, जैसा लक्ष्मीबाई झांसी रानी है ना, बुंदेलखंड की थी, महाराष्ट्र की, पुणे में जन्म हुआ, 12 साल की बड़ी हुई, 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। गंगाधर राजा झांसी का राजा, उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। झांसी रानी जैसे ही राजमहल में आ गई, विवाह हुआ, तो राजा के अनेक संकट टल गए। देखिए आप, एक सत्यनिष्ठ आत्मा होता है तो सारे संकट दुनिया से दूर होने लगते हैं। ये शुभ लक्षण, शुभ शकुन राजघराने में जब होने लगे, राजा प्रसन्न हुआ। छोटी उम्र में उसका नाम था मणिकर्णिका, और बड़ी बनने के बाद विवाह के पश्चात पति ने उसका नामकरण बदल दिया, उसका नामकरण किया लक्ष्मीबाई। क्यों किया? उसके कदम रखते ही जो चोरी में धन चला गया था वो चोरी का धन मिल गया। देखो, एक पुण्यात्मा आता है तो पाप के उदय में जो कार्य घटित होते हैं, पुण्यात्मा के आने मात्र से धन संपत्ति वैभव अनुकूलताएं सभी के सभी जुड़ने लगते हैं। संयोग ही ऐसा होता है धर्मात्मा का, पुण्यात्मा का। उसी पुण्य का प्रभाव था, लक्ष्मी बाई का विवाह तो हो गया, होने के पश्चात राजा के माध्यम से इतना सम्मान मिल गया कि आपका नाम हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज करना अनिवार्य है, मणिकर्णिका तो जन्म का नाम है लेकिन मैं आपका नाम रख देता हूं। घोषित किया राज दरबार में, मैं नामकरण करना चाहता हूं लक्ष्मी बाई। जयकारा हो गया राज दरबार में। लक्ष्मी बाई, महारानी लक्ष्मी बाई की जय। कैसी थी वो लक्ष्मीबाई? अकेली थी, भारतवर्ष एक तरफ था और लक्ष्मीबाई एक तरफ थी। पर लक्ष्मीबाई के अंदर एक क्षमता थी, ये शक्ति थी, ये बुद्धिमानी थी, ये साहस था, ये वीरता थी कि वह सामने वाले पक्ष को अपने में ढालकर परिवर्तन करा सकती थी, विपक्ष को भी सपक्ष में बदलने का अवसर प्राप्त कर देती थी। ऐसे इस ढंग से, इस चाल से चलती थी कि सामने वाला उसका हो के रह जाता था। वीर बनने के बाद सारे गुण आत्मा के भीतर प्रकट होने लगते हैं। आत्मा अनेक अनंत गुणों की संभावना मानी जाती है। इन संभावनाओं को हम अपनी कमजोरी के कारण, साहस न होने के कारण उनको कुचाल देते हैं और वे गुण हमारे पास प्रकट नहीं हो पाते, सो जाते हैं, हम ही उनको सुलाते हैं। आत्मा के पास वह शक्ति है या नहीं जो अनंत गुण है उसको प्रकट करा सके? अपने आप में है, पर साहस न हो तो होंगे क्या? नहीं होंगे। तो सत्य के मार्ग पर इतनी निष्ठा होना आवश्यक है कि सत्य के स्वरूप को बदल करके किसी पगडंडी का मार्ग किसी को बताना नहीं, पगडंडी नहीं बताना। तीन दोष हैं सम्यक ज्ञान के। पहला दोष, मोक्ष मार्ग के स्वरूप को कम करके भी नहीं बताना, अधिक करके भी नहीं बताना और विपरीत भी नहीं बताना। ये लक्षण अपने ज्ञानोपयोग के अंदर प्रतिष्ठित हो जाए तो फिर कहना क्या है? धरती भी स्वर्ग है और स्वर्ग में जाने के बाद भी स्वर्ग है। स्वर्ग की अनुभूति करता है सम्यक दृष्टि जीव, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जीने का साहस रखता है सम्यक दृष्टि जीव। यही तो विशेषता होती है सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी को, तो लक्ष्मीबाई कहना चाहिए। सम्यक दृष्टि वीर होता है, विवेकी होता है, गंभीर होता है, साहसी होता है। उसके पास लौकिक व्यवहार चलाने के लिए जितने भी गुण हैं वे सारे के सारे विद्यमान रहते हैं, इसलिए तो वो सम्यक दृष्टि है। इतना साहस तो अवश्य वह रखता है कि पगडंडी का मार्ग नहीं बताता। ये उसका प्रथम लक्षण है। और ऐसे बताने लग जाए तो अन्यून मनत्रिक्तम याथा तथ्यम विनाश विपरीतात्, ये घटित नहीं होगा, उसमें दोष उत्पन्न होगा। तो सम्यक ज्ञान यदि कलंकित होगा तो क्या सम्यक दर्शन कलंकित नहीं होगा? अवश्य होगा। और फिर चारित्र को हम बहुत उत्कृष्ट रूप से रखते हैं, उपवास करते हैं। महाराज, 10 लक्षण में हम 10 उपवास करते हैं। जहां सम्यक दर्शन कलंकित है वहां क्या चारित्र कलंकित नहीं होगा? सम्यक दर्शन के अभाव में जो चारित्र रह जाता है अपने जीवन में, उसको सम्यक संज्ञा देंगे या मिथ्या संज्ञा देंगे? सम्यक मिथ्या, मिथ्या संज्ञा ही देंगे ना। सम्यक दर्शन कलंकित हो तो चारित्र कलंकित नहीं होगा क्या? होगा। कौन सा चारित्र कलंकित होगा? बाह्य चारित्र या अंतरंग चारित्र? हाँ, अंतरंग चारित्र। बाह्य चारित्र भी कलंकित होगा, लेकिन इतना ही होगा, वो पहले सम्यक रहता है, बाद में उसके लिए भी उपाधि प्रदान होती है मिथ्या। भाव चारित्र के अभाव में द्रव्य चारित्र भी सम्यक की कोटि में, सम्यक तो नहीं, सम्यक यानी यथार्थता की कोटि में नहीं आता। ये सब विषय समझना आवश्यक है कि नहीं? एक धर्मात्मा को आवश्यक है। और ये सब समझ करके यदि हम चल रहे हैं तो सम्यक दर्शन निर्मल रहेगा क्या मलिन होगा? निर्मल रहेगा। सम्यक ज्ञान निर्मल रहेगा क्या मलिन होगा? सम्यक चारित्र लिया हुआ अनुव्रत या महाव्रत निर्मल रहेगा क्या मलिन होगा? निर्मल रहेगा। इसी रत्नत्रय पर मल अर्थात धूल, धूली को बैठने नहीं देना, इसी का नाम रत्नत्रय की रक्षा है। और अपने आत्मा का स्थितिकरण मोक्ष मार्ग में जो होना चाहिए, यही स्थितिकरण है। पर का स्थितिकरण करने से पहले हमें अपना स्थितिकरण करना है। किस किस से बचना है? सूत्र लिखिए, ख्याति लाभ पूजा लिखो, चिंतन मनन करो, कोई भी धर्म का कार्य करो, लेकिन ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं। हाँ, स्थिर करो। क्या लिखा? ख्याति मेरी प्रसिद्धि होना चाहिए, मैं ख्यात हो जाऊं, बड़े कहलाऊं, सब मेरा नाम ले, मेरा नाम न डूबे। अरे नाम कैसे डूबता है धर्मात्मा का? अरे धर्म डूब रहा है, नाम डूब रहा है, और धर्म नहीं डूब रहा है तो आपकी क्या हानि हो रही है? होने दो ना, साधी शांत डूब रहा है, अच्छी बात है। जो साधी अनंत है वो तो नहीं डूब रहा है ना, डूब जाने दो। नाम का फिक्र मत करो, धर्म ओरिजिनल नाम लेकर के उठ करके आ जाएगा। धर्मात्मा का नाम धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी अंकित रहता है। स्वर्गीय देवता भी जो ख्याति ला पूजा से रहित धरती पर रहने वाला धर्मात्मा होता है, उसका नाम तो वहां पर भी लेते रहते हैं। वो यहाँ आकर के देखा भी नहीं, अवधि ज्ञान के माध्यम से देख लिया कि ये जीवात्मा ख्याति ला पूजा से दूर है, प्रसिद्धि से दूर है, और रत्नत्रय को निर्मल रखता है, तो वहां स्वर्ग में चर्चा चलती है। स्वर्ग की चर्चा श्रेष्ठ है कि यहाँ पर आसपास के सीमित क्षेत्र में जो चर्चा चल रही है, नाम की बड़ाई हो रही है, ये श्रेष्ठ है? एक इंद्र देवता सम्यक दृष्टि, शची इंद्र, सम्यक दृष्टि सारे के सारे देव उनका परिवार प्रशंसा कर रहा है, और आपके ऊपर कोई संकट आता है तो तुरंत इंद्र आदेश दे देता है, जाओ उस सम्यक दृष्टि का रक्षण कर लो, उसकी रक्षा करो, भेज देता है कि नहीं? सीता पर संकट आया, किसने भेजा रक्षा के लिए? इंद्र देवता ने, क्योंकि सारे देवता इंद्र की आज्ञा में रहते हैं, और इंद्र देवता को अगर पता चल जाए तो ये सीलवान धर्मात्मा के ऊपर ये संकट आया है, तो इंद्र चुपचाप नहीं बैठ सकता, यहाँ पर चमत्कार हो उठता है, धर्मात्मा के आसपास परिसर बदल जाता है, क्योंकि इसका पुण्य इतना रहता है कि इंद्र भी रक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। धर्मात्मा की रक्षा देव करते हैं, इसमें क्या संशय है, क्या संदेह है? धर्मात्मा के आसपास में ही तो घूमते हैं देव लोग, वो कुछ होने नहीं देते। चार प्रकार के उपसर्ग आते हैं, कौन कौन से? प्रकृति कृत उपसर्ग, देवकृत उपसर्ग, मनुष्य कृत उपसर्ग और तिर्यंश कृत उपसर्ग, और एक नैसर्गिक प्रकृति कृत यानी नैसर्गिक उपसर्ग। ये और यदि धर्मात्मा की रक्षा नहीं हुई तो धर्मात्मा भी समझ लेता है मेरे पास पुण्य नहीं था, मेरी रक्षा कौन करेगा। तद्भव मोक्षगामी उन आत्माओं की भी रक्षा नहीं हुई, जैसे कि गजकुमार, जैसे कि सुकौशल मुनि, जैसे कि राजा श्रेणिक उपसर्ग कर रहे थे, उनका नाम क्या, यशोधर मुनि, उनकी रक्षा करने के लिए कौन आया? 7 दिन तक उपसर्ग सहते रहे, कोई भी नहीं आए। धर्मात्मा क्या धर्म पर विश्वास उठाएगा कि मैं धर्मात्मा बन गया और देवलोग नहीं आए रक्षा करने वाले? ऐसा विचार करेगा, ऐसा चिंतन शुरू करेगा क्या? धर्म स्वीकार करने के बाद तो हमने सोचा था कि देवलोग भी आते हैं, ऐसा सुना भी है शास्त्र में, और कोई नहीं आए। अफसोस होगा त्याग तपस्या से? नहीं। धर्मात्मा कैसा विचार करता है? अगर मेरे कोई रक्षा करने वाला नहीं आता है तो ये मेरा पाप कर्म का उदय, और यदि रक्षा करने वाला आता है तो उस समय समझता है मेरा पुण्य कर्म का उदय। और अंतरंग में ये भाव रखता है धर्मात्मा, मेरी रक्षा कोई करे या न करे, मेरी रक्षा तो मैं ही करता हूँ, मेरा ही करना मेरे लिए कर्तव्य है, बस बाहर का उपसर्ग मेरे करंडक को हिला नहीं सकता। ये रत्न का करंडक है, इन रत्नों को हिलाने की क्षमता किसी भी उपसर्ग के पास नहीं है। क्यों डरेगा वो? डरता नहीं, मुस्कुराता हुआ बैठ जाता है। जितने भी धर्मात्मा होते हैं, वास्तव में यदि वो धर्मात्मा हैं तो उनको कष्टों से चिंता नहीं रहती, निर्भीक रहते, भयभीत नहीं रहते, अपन छोटी छोटी बातों के लिए डरते हैं। कैसा सम्यक दर्शन धारण करे, घर का वातावरण ऐसा है, समाज का वातावरण ऐसा है, हमारा परिसर इस प्रकार का है, कैसा क्या करें, मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्या जरूरत है ये मुसीबत में पड़ने की? सरल बनो, सहज बनो, सत्य मार्ग के प्रति निष्ठा रखो, निष्ठा रख करके साहसी बन करके धर्म को स्वीकार करो, धर्म का स्वागत करो अपने जीवन में, जो आज तक अनादिकाल से हमने स्वागत करने का साहस नहीं किया। करना पड़ेगा कि नहीं? करना ही पड़ेगा, एक न एक दिन करना पड़ेगा, और किसी भी भाव में करो, उस भाव में भी करना ही पड़ेगा कि नहीं? इस भाव में नहीं करोगे तो अगला भाव करना ही पड़ेगा, उसमें भी नहीं कर पाए तो उसके अगला भाव करना ही पड़ेगा। ये साहस के बिना क्या रत्नत्रय अपने जीवन में जीवित हो सकता है? धर्म जीवित नहीं होगा, और जिस भव्यात्मा के भीतर धर्म जीवित नहीं, वो आत्मा मृत कहलाता है। और आत्मा को हमको मृत नहीं रखना है, आत्मा को हमें अमृत रूप देना है, अमृत बनाना है, अमृत बनाना है, अमृत जहां पर मरण है ही नहीं, उनका नाम है अमृत, अमर, मरण नहीं है, मृत नहीं है जो आत्मा, उसी आत्मा का नाम है अमृत। अमृत कौन है? अमृत यह नाम सिद्धों का है, सिद्धों को अमृत कहा है, अरहंत भगवान भी अमृत नहीं है, साधु परमेष्टि अमृत नहीं, ये भी इनको भी मरण करना पड़ता है, पंडित मरण करना पड़ता है, और प्रतिमाधारी को मरण करना पड़ता है, बाल पंडित मरण करना पड़ता है, और चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा को बाल मरण करना पड़ता है, सबको मरण है। जिस गुणस्थान तक मरण है वे सारे के सारे गुणस्थान आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकते। जहां स्वभाव की उपलब्धि होती है वहां पर मरण नहीं, और जहां पर मरण होता है वहां पर स्वभाव की उपलब्धि नहीं रहती। ये सत्य बात है, अकाट्य सत्य है। स्वभाव की उपलब्धि तो केवल सिद्ध परमेष्टि के अवस्था में ही होती है, और उसके नीचे स्वभाव की उपलब्धि किसी को भी नहीं होती। तो महाराज बताया तो जाता है शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना ये स्वभाव की उपलब्धि है नहीं, उपचार कथन है। शुद्धात्मा की अनुभूति कर लेना, अशुभोपयोग को हटाकर शुभोपयोग में आना, और शुभोपयोग को भी हटा करके शुद्धोपयोग में जाना, ये स्वभाव की उपलब्धि नहीं, स्वभाव की ओर जाने के धर्म की उपलब्धि है। देखो रहस्यभूत बातें चिंतन करने के लिए एक एक चीजें इतने मार्मिक हैं, तो एक एक चीज को पकड़ पकड़ करके अपने को आगे बढ़ना है। वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसी का नाम धर्म है, और वस्तु का विभाव के अभाव रूप जो धर्म की उपलब्धि है वो किस अवस्था में प्रकट होगी? सिद्ध अवस्था में। विभाव का सर्वथा अभाव द्रव्य में, अरहंत भगवान की आत्मा भी विभाव परिणति में है, उनका ज्ञान स्वभाव है लेकिन उपचार से ही है। वस्तुतः ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान का विनाश नहीं हो रहा है, अज्ञान की उत्पत्ति वहां नहीं है, फिर भी शरीर आदि के बंधन में पड़ा हुआ आत्मा यद्यपि केवल ज्ञान को लेकर के पड़ा हुआ है लेकिन वह स्वभाव की अनुभूति नहीं कर रहा है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है, उसकी अनुभूति तो केवल सिद्ध परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म से सर्वथा मुक्त है ना, इसलिए। ऐसा धर्म हमारा ध्येय है, और उस धर्म को पाने के लिए जिस धर्म को स्वीकार करना पड़ता है, जिस धर्म की साधना करनी पड़ती है, जिस धर्म को अपनाना पड़ता है, ये वस्तु स्वभाव रूप धर्म नहीं, शुद्धोपयोग में भले ही मुनि महाराज विराजमान हैं, कर्मों का क्षय कर रहे हैं, विभाव परिणति को हटाने के लिए तो शुद्धोपयोग का आश्रय लिया गया है, विभाव परिणति को दूर करने के लिए और वस्तु स्वरूप तक पहुंचने के लिए, शुद्ध स्वभाव तक पहुंचने के लिए तो ये शुद्धोपयोग को अपनाया गया है। शुद्धोपयोग भी सादी शांत है, उसको स्वभाव कैसे समझ सकते हैं? जो स्वभाव होता है वो सादी अनंत होता है, जो स्वभाव होता है वह सादी अनंत होता है, वह सादी अनंत नहीं रहता, इसलिए स्वभाव नहीं है। कोई चीज स्वभाव है या नहीं इसका परीक्षण हम कैसे करें? तो उसका माध्यम ये है, कसौटी पर रखो, ये आत्मा की पर्याय, ये सादी शांत है या सादी अनंत, एकदम निकल आएगा। आजकल शुगर को टेस्ट करने के लिए कितना शुगर है व्यक्ति के शरीर में, एक मशीन आया हुआ है, देखा है उस मशीन को? ब्लड निकाला जाता है, उसमें कुछ ऐसा लगाया जाता है और ब्लड को उसको टच करते ही तुरंत रिजल्ट आ जाता है, कितना है 108। अपन बोरगांव में थे, ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया कि शरीर में कुछ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, और डायग्नोसिस करने वाले भी फेल हो रहे थे, और उनको ये ध्यान में आ रहा था कि वो करो ये करो, शुगर भी चेक करो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, भीतर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका शुगर चेक कर लेते, वो डॉक्टर यहीं पर बैठे हैं। उन्होंने तुरंत मशीन लाई और उस मशीन के भीतर ऐसा कुछ होता है उसका, हमको तो मान नाम मालूम नहीं, पहली बार देखा उस मशीन को, हम मेरे सामने चेक कर दिया गया और हमारा ब्लड थोड़ा सा निकाला गया, हमारा नहीं इस शरीर का, हमारे पास ब्लड ही नहीं है। सावधानी से बोलना पड़ता है। ब्लड निकाल दिया और उस पर थोड़ा सा टच किया तो खटपट खटपट एक सेकंड में आ गया 108। महाराज आपके पास तो शुगर नहीं है, नॉर्मल है, और 108 आ रहा है, तो हम नॉर्मली 108 तो पहले से ही थे और आ गया तो ये और अच्छा हुआ। और कैसा योग बना देखो, शरीर भी 108 पर चल रहा है और हम भी 108 पर चल रहे हैं, दोनों की दोस्ती हो गई थी। और फिर हमको साहस आया कि शरीर हमारा साथ भी छोड़ देता है तो 108 पर छोड़ दे तो पंडित मरण तो है ही, शरीर भी 108 है और आत्मा भी 108 है, तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो नियोग है। आत्मा का शरीर नहीं है, ना आत्मा में ब्लड है, ना आत्मा का ब्लड है, ना आत्मा में ब्लड है, ना आत्मा का ब्लड है, जो कुछ भी ये मटेरियल है सब शरीर का है, शरीर धर्म साधन का उपाय, धर्म को साधने के लिए शरीर उपाय है, इस शरीर को साथ लेकर के चलना है। रोग हुआ तो रोग को भी दूर करो, आगम्य आदेश है भगवान का, रोगी शरीर रोग की अवस्था में समाधि मरण नहीं कर सकेगा, इसलिए इलाज करो, संदेश दिया है भगवान ने, इलाज करके तुम स्वस्थ हो करके शरीर भी स्वस्थ रहे और आत्मा भी रत्नत्रय की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से अपने आप में स्वस्थ रहता है तो समाधि मरण बढ़िया होता है, पंडित मरण होगा। आज पंचम काल में पंडित मरण ही तो है, पंडित मरण तो होने वाला नहीं है, पंडित मरण है। और गुणस्थान कितने हैं पंचम काल में? 7 गुणस्थान हैं। ये 7 गुणस्थान हमें मोक्ष जाने के लिए पंचम काल में भी साथ दे सकते हैं, ऐसा मत समझना, अधीर मत होना, पंचम काल है तो आज धर्म नहीं होता, भगवान की वाणी है पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म रहेगा और धर्मात्मा भी रहेंगे, मुनि आरिका श्रावक और श्राविका, ये चतुसंग पंचम काल के अंत समय तक रहने वाला है, इसमें कोई शंका? शंका हो तो धर्म धारण नहीं कर सकते, पंचम काल है और धर्म कैसे हो सकता है, ऐसा विचार जिसको आता है उनको अभी भगवान की वाणी ही मालूम नहीं है कि भगवान ने क्या संदेश दे करके मोक्ष चले गए। भगवान ने संदेश दिया है कि नहीं? पंचम काल में भी कोई भी सहनन को धारण करने वाला भव्यात्मा क्यों ना हो, कोई भी सहनन, सभी सहननों के साथ कम से कम 1 से 7 गुणस्थान तो होते ही होते हैं। यही प्रमाण है पंचम काल में धर्म है या नहीं कहने के लिए। सहनन 6 होते हैं पंचम काल में, कहा भगवान ने कि अंतिम सहनन 3 ही प्राप्त होते हैं, 4th, 5th, and 6th 3 ही सहनन प्राप्त होते हैं। 4th सहनन से भी मुनिव्रत धारण करेंगे चाहे वो 4th काल हो, 4th सहनन के साथ 4th सहनन के साथ संयम धारण करेंगे तो चाहे 4th काल हो चाहे 5th काल हो, गुणस्थान आपको 7 ही प्राप्त होंगे ज्यादा से ज्यादा। 5th प्राप्त हो तो भी आप 7th गुणस्थान तक जा सकते हैं। 6th सहनन हो तो भी आप 7th गुणस्थान तक ही जा सकते हैं। यदि आप 7th गुणस्थान से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका जन्म 4th काल में होना आवश्यक है, भरत क्षेत्र की अपेक्षा से। 4th काल तो विदेह क्षेत्र में भी है, 4th काल जैसा काल सदा परिवर्तनशील रहता है वहाँ 6 काल का परिवर्तन नहीं रहता, सदा ही मोक्षगामी जीव वहाँ पर जन्म लेते हैं। वहाँ पर 6 प्रकार के सहननों को धारण करने वाले भव्यात्मा सदा रहते हैं, है 4th काल जैसा काल, परंतु वहाँ पर पहले सहनन वाले भी पाए जाएंगे, दूसरे सहनन वाले भी, तीसरे सहनन वाले भी। इन 6 प्रकार के सहननों में से किस सहनन का धारी को, किस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी? वज्र वृषभ नाराज सहनन। क्षायिक सम्यक दर्शन किसको होगा? वज्र वृषभ नाराज सहनन धारी को। दूसरे सहनन धारी को भी क्षायिक सम्यक तो नहीं है, तीसरे सहनन वाली को भी क्षायिक सम्यक तो नहीं है, उनके लिए 3 सम्यक तो हैं ज्यादा से ज्यादा, प्रथमोपशम, क्षायोपशम और द्वितीयोपशम। ये 3 सम्यक तो होते हैं। कौन कौन से सहनन धारी को? पहले सहनन को तो क्षायिक भी हो सकता है, परंतु सभी हो सकते हैं ये बात अलग है। दूसरे सहनन वाले को कितने सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकते हैं? दूसरे सहनन वाले को 3 हो सकते हैं, प्रथमोपशम सम्यक तो, द्वितीयोपशम सम्यक तो और क्षायोपशम सम्यक तो। और दूसरा सहनन धारी यदि गुणस्थानों में आगे बढ़ेगा तो कितने गुणस्थानों तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, क्या क्षमता है उनकी? 11वें गुणस्थान तक। देखो कैसा गणित है, ये सभी गणित भगवान ने सब जब केवल ज्ञान के माध्यम से इन जीवों की परिणति को सहनन की अपेक्षा से अपने केवल ज्ञान में देख करके कि दूसरे सहनन वाला ज़्यादा से ज़्यादा किस गुणस्थान तक जा सकता है, अनादिकाल से जो भी दूसरे सहनन वाले थे किस गुणस्थान तक जा पाए हैं, किस गुणस्थान तक जा रहे हैं और किस गुणस्थान तक भविष्य में जाएंगे, ये क्या केवल ज्ञान में नहीं आता? आता है। केवल ज्ञानियों ने सहननों की व्यवस्था नहीं की है, केवल ज्ञान में देख करके ये जीव इसी गुणस्थान तक जाएगा ऐसा संविधान की रचना केवल ज्ञानी ने नहीं बनाया है, ये प्रकृतिकृत संविधान पहले से ही था, उस संविधान का केवल ज्ञानी ने उपदेश दिया है। दूसरा सहनन हो तो 11वें तक जा सकता है, आज पंचम काल में वह दूसरा सहनन तो नहीं है। तीसरा सहनन हो तो वह भी 11वें तक जा सकता है, 12वें में नहीं जाएगा, जी, बारहवें में तो एक ही सहनन वाला जाएगा पहले नंबर का, वज्र वृषभ नाराज सहनन। चौथा सहनन हो तो छठे तक जा सकता है। कौन सा जीव? नहीं छठे नहीं, सप्तम तक जा सकता। कौन सा जीव? हाँ, अर्धनारायण सहनन वाला। कौन सा जीव? मनुष्य, पुरुष पर्याय से, स्त्री पर्याय से नहीं, स्त्री को भी, क्योंकि चौथा काल हो, चाहे विदेह क्षेत्र में जन्म हो, चाहे भरत क्षेत्र में जन्म हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे चौथा काल हो, सहनन कितने मिलते हैं स्त्री पर्याय में? तीन ही मिलते हैं, चौथा सहनन, पांचवा सहनन और छठा सहनन। देखिए तीन ही मिलेंगे, और यदि भोग भूमि में जन्म हो जाए स्त्री पर्याय के साथ तो कितने मिलेंगे? हाँ, उस समय जिस समय मोक्ष नहीं होता उस समय स्त्री को वज्र वृषभ नाराज सहनन की प्राप्ति होती है, देखिए कितनी विडंबना है। और जिस समय मोक्ष जाने का अवसर प्राप्त होता है, काल मिलता है, क्षेत्र मिलता है, आर्यखंड मिलता है, विदेह क्षेत्र मिलता है, भरत क्षेत्र मिलता है, तो उनको चार ही सहनन मिलते हैं। नहीं, लास्ट की तीन, चौथा पांचवा छठा, तीन ही मिलते। कैसा भाग्य! वज्र ऋषभ नाराज सहनन का आनंद लेने का अवसर नहीं है, जब मिला क्या होता है? मोक्ष क्या होती है श्रेणी? क्या वज्र ऋषभ नाराज सहनन को धारण करने वाली एक स्त्री भोग भूमि की क्या श्रेणी चढ़ेगी? संयम धारण कर सकती है? न पुरुष संयम धारण कर सकता है, न स्त्री संयम धारण कर सकती है। संयम धारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि भोग भूमि का शरीर संयम धारण के योग्य ही नहीं रहता। शरीर ही ऐसा है, शरीर का नेचर ऐसा है, शरीर की प्रकृति ऐसी है, क्योंकि भोग परिणाम इतने कोमल रहते हैं कि उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। सम्यक दृष्टि बन सकता है भोग भूमि वाला कोई जीव, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, पर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भोग भूमि में स्त्री पर्याय में कहीं भी एक भी नहीं है। कितनी सारी भोग भूमियां हैं, जगन्य भोग भूमियां तो मध्य लोक में असंख्यात हैं, असंख्यात भोग भूमि। जगन्य भोग भूमि को मिलाएंगे तो असंख्यात। ढाई द्वीप में रहने वाले छह और ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात भोग भूमि जो होती हैं वो सारे के सारे असंख्यात हैं। तो असंख्यात जगन्य भोग भूमि हैं, मध्यम भोग भूमि छः हैं और उत्तम भोग भूमि छः हैं। ये बारह भोग भूमि और जगन्य भोग भूमि असंख्यात, इन भोग भूमियों में त्रियंश भी हैं और मनुष्य भी हैं। मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य भोग भूमि में अवश्य पाए जाती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो बद्धाइश्क होकर के मनुष्य पर्याय को बांध कर भोग भूमि में चले गए, उनके पास क्षायिक सम्यक तो होता है। यहाँ तक कि ढाई द्वीप के अंदर और ढाई द्वीप के बाहर दोनों जगह जो तिर्यंच प्राणी हैं, उन तिर्यंच प्राणियों में भी क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंचनी एक भी जीव नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में कहीं भी क्षायिक सम्यक तो इस तीन लोक में पाया नहीं जाता। तीन लोक में कहीं भी दो वेद के साथ, दो पर्याय के साथ क्षायिक सम्यक तो है, पुरुष पर्याय के साथ क्षायिक सम्यक तो है और नपुंसक पर्याय के साथ भी क्षायिक सम्यक तो है, जिसका स्पष्ट साक्षात उदाहरण प्रथमान योग में मिलता है। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाला श्रेणिक राजा महावीर भगवान के समोशरण में, केवली भगवान के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। क्षायिक सम्यक दृष्टि था, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। आज कहाँ है? पहले नरक में। सम्यक्त्व के साथ जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाता। साढ़े चार हो गया। राजा श्रेणिक नपुसक पर्याय में है और नपुसक पर्याय के साथ क्षायिक सम्यक्त्व का संबंध है, परंतु ऐसा एक भी जीव बताइए किसी भी क्षेत्र का तीन लोक में स्त्री पर्याय के साथ क्षायिक सम्यक्त्व हो, नहीं है। स्त्री पर्याय ऐसी पर्याय है क्षायिक सम्यक दृष्टियों को जन्म दे सकती वह पर्याय, पर क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकती। तीर्थंकरों का जन्म किससे हुआ? 9 माह तक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को गर्भ में धारण करके जन्म देती है स्त्री, इसलिए महान है। क्षायिक सम्यक दर्शन भले ही न हो लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव अपने गर्भ में आया है, तो स्त्री पर्याय के बिना भी तो क्षायिक सम्यक दृष्टि मोक्ष नहीं जा सकता, आश्रय लेना पड़ा 9 माह तक। इस मायने में स्त्री पर्याय की महत्ता बढ़ जाती है। तीर्थंकर भगवान देखिए कहाँ से आ गए, अगर स्त्री ना होती तो तीर्थंकर कहाँ से आते। इसका अर्थ ये नहीं है कि इतना महान है तो स्त्री की पूजा करना चाहिए, कई लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं, और तीर्थंकर को जन्म देने वाली स्त्री को भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकती, उल्टी सीधी कुतर्क की बातें, कितनी अज्ञानता की बातें हैं। स्त्री अभिषेक करने का अधिकार नहीं रखती, इसमें ये कारण नहीं कि उसने जन्म दिया है तो अभिषेक करने के लिए अधिकारी बन गई, पूजा कर सकती है, दर्शन कर सकती है, पूजा करे, दर्शन करे। दर्शन करने का भी क्या रूल्स है, भगवान ने क्या बताया है, कितनी दूरी से? 7 हाथ दूरी से। ऐसा क्यों पक्षपात किया? 9 माह तो अपने पेट में लेकर के रखा है और बाद में 7 हाथ से दूर से दर्शन करो, ऐसा तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया स्त्री पर्याय के लिए, 7 हाथ से दर्शन दूर से करो। मुनि की सेवा वैयावृत्ति कर सकती है स्त्री? हाँ, आहार दे सकती है क्या? नहीं। 7 हाथ दूर से क्या 1 फुट दूर से? इसमें भी कुतर्क करते हैं, क्या कहें अब, उनका दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ता है और कैसे कैसे दौड़ता है, दौड़ने के लिए भी कोई ढंग नहीं है, पद्धति नहीं है, ऐसा दिमाग दौड़ता है। कितनी कुतर्क हैं, और ये सब कुतर्क क्यों होते हैं? आगम का अच्छा अध्ययन न होने से कुतर्क की बातें सामने आती हैं। क्या समझाओगे उनको? और आपको भी ज्ञान नहीं है तो समझा नहीं पाओगे, इसलिए आगम का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। जिनवाणी का अध्ययन स्वाध्याय निरंतर क्यों करना चाहिए? इसलिए कि अपने पास जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो भी दूर हो सके और इसी समय ज्ञान से दूसरा का भी कल्याण हम कर सके, दूसरे का भी कल्याण हम कर सके, इसलिए स्वाध्याय आवश्यक है। समय हो गया, ज़्यादा समय न लेते हुए टाइम टू टाइम, कितना बजे? 1.5 घंटे का तो हो ही गई ना? हाँ, 1.5 घंटे का, सुबह और शाम 1.5 घंटे पर्याप्त है, ठीक है। और रस तो आता रहता है आप लोगों को, लेकिन बीच में ही जैसे खाने वाले थाली को एकदम छीनने जैसा लगता है, तो लगने दो, क्या करना, समता तो रखना है, धैर्य रखना है, समता को छोड़ करके तो चलना नहीं अपने को, ठीक है, जिनवानी करे।
पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी, जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी।